में रंध्र होते हैं, किसी में साठ होते हैं, किसी में कुछ। एक बंसी होती है, एक मुरली होती है, एक वेणु होता है, तरह तरह। और वेणु में भी तरह तरह के होते हैं, किसी में मड़ियां जड़ित रहती हैं, किसी में केवल बांस, उसमें कोमल मधुर शब्द होता है। तरह तरह के वो सब इसीलिए बने हैं। कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। उसके रंध्रों में अधर सुधया, अपने अधर सुधा को मनुष्य के रूप में भर दिया। भरने के बाद में देखा ये बड़ी कठोर है, मैंने इसको चेतन बनाना चाहा किंतु चेतन तो बन नहीं सकी। हमारे अधर रस का मूल्य क्या ये समझेगी मानो, ये तो काफी तो आखिर है। तो उनकी अधर सुधा ने देखा ये योग्य नहीं, तो उससे निकल पड़ी और निकल करके योग्य स्थल को खोजने लगा। ब्रह्मांड में कहीं योग्य स्थान नहीं मिला, तो क्या किया, ब्रह्मांड को पार कर गई, परब्रह्म को पार कर गई, अयोध्या साकेत इत्यादि को पार करके गोलोक द्वारका मथुरा को पार करके वृंदावन में पा करके देखा ये सब ही हैं, सबके पास नहीं गई, कोमल से कोमल हृदय ढूंढ रही है। और कोमल से कोमल ढूंढने के लिए जहां वो हैं वहां गोपियां वहां पर पहुंची। अब पहुंच करके कान के छिद्र से बस पहुंच गए। अब पहुंच करके उनके जो सबसे मूल्यवान चीज है उसको चुरा दी, मन को चुरा दी। मन के साथ साथ उनके धैर्य, लज्जा, कर्तव्य निष्ठा, शील, सबको लेकर के और मन को लेकर के वहां से निकल आए। अरे हमारा मन कहां गया, एकदम बावरिशी होकर उसको ढूंढने के लिए चलते। इसलिए गोपियां जहां से तहां अपने समस्त कामों को छोड़ करके जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में सब कामों को छोड़ करके पागल होकर के चोर के पीछे भागी। कपूरयन गोप बृंदई गोपूरयन गोप बृंदई वृंदारण। और सखा लोग क्या कर रहे हैं, गोप कीर्ति सखाओं से परिवेषित होकर के और कृष्ण गैयों को चराने जा रहे हैं या गैयों को चरा करके ला रहे हैं या उनके साथ में गिरे हुए सखा लोग सावा सावा साधु साधु कहते हुए उनकी कृति का गान कर रहे हैं। और कृष्ण अपने सुंदर लक्ष्मी से युक्त अपने श्री चरणों से वृंदावन में अपने चरण कमलों से ही लक्ष्मी कपदम बिंदारण सपद रमणम अपने चरणों से उसमें ध्वज वज्र अंकुश पताका कमल इत्यादि के सब चिन्ह इसी से पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी का भी उस समय सौभाग्य, वृंदावन का सौभाग्य किस ब्रज का, पृथ्वी का कि ब्रज है। अब ब्रज का सौभाग्य किस लिए कि कृष्ण के ऐसे चरण कमल पृथ्वी ऊपर, अभी ऐसा आज तक कर नहीं होगा। रामचंद्र जी गए किंतु वो दुखी होकर के गए, दुखी होकर के गए। एक तो पिताजी ने निकाल दिया, दूसरी उनकी सीताजी चोरी हो गई, कुछ और भी बात। और कृष्णचंद्र कैसे परमानंद से गायन के साथ में सखाओं के साथ में और ऐसी स्थिति में बड़े आनंद होकर के विचरण कर रहे हैं। पृथ्वी का ऐसा कभी सो इसलिए मानव पुलकित हो रही है। इसलिए कहते हैं सफरणम प्राविशत गीत कृति, सखा लोग उनकी कृति करते हुए चले जा रहे हैं। गोपियां इसका स्मरण करते ही बस ना सखा स्मर दे गई, एकदम विवश हो गई, गान नहीं कर सकी। और अंत में कहने लगी जिसने इस रूप को देखा उसी का ये आंख धारण करना सार्थक। श्याम परिधि बन वाले द्वारा मन में ये है यहाँ क्यों किया उन्होंने साधन नहीं किसी का भी जो भक्ति चाहते हैं किसी का लीला का चिंतन और पूर्णता ये भी भक्ति उन्होंने ठाकुर जी ने दिया इन्हीं लीलाओं का चिंतन करेंगे कीर्तन करेंगे स्मरण इसलिए इसको साधन सिद्धों के लिए जो सिद्ध है वो साधकों के लिए उसी का चिंतन स्मरण कीर्तन ही हम लोगों का साधन इसलिए हम लोग उसको चिंतन करेंगे कीर्तन करेंगे और इसका कीर्तन स्मरण करेंगे हम लोग बढ़ा के जब नकल और बकुल कृष्ण का रूप किसी रूप का चिंतन करना एक ही आराध्य होगा और उसी आराध्य का चिंतन करना और उसी का ही ध्यान करना उन्हीं का स्मरण बंधन पाद सेवन अर्जन बंधन का साक्षात निवेदन बस उसी में एक ही तीनों कारण हैं ये जो नाम है और ये जो रूप है प्रस्तुत नाम में स्वभिस्मक श्रीमूर्ति मुक्त भाव उदय की जैसा भाव ऐसा ये नाम करते 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 हरिनाम करते 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 वैसा कीर्तन करते 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 स्मरण करते करते सेवा करते 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 वह नाम रूप के रूप में प्रस्तुत है पहले ये नाम कली कली के समान है जैसे अनार की कली फूलों की कलियां होती हैं ऐसे नाम एक कली है उसका बहुत दिनों तक साधन भजन करते 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 हृदय में वो थोड़ा सा प्रस्फुटित होती है तो उसमें कुछ रूप आ जाता है रूप के साथ में उसमें गुण आ जाते हैं गुण के साथ साथ में उनकी लीलाएं का भी स्मरण अपने आप होता है और अंत में परिकर समय उसमें हो जाता है फिर इस शरीर को दूर कर देता है लिंग भंग है अनायास ये शरीर का जो लिंग है अर्थात स्थूल और सूक्ष्म शरीर ये दोनों हट जाते हैं और शुद्ध स्वरूप से उन्हीं लीलाओं के स्मरण से वो वैकुंठ दोनों सामने पहुंच जाता है इस तरह से ये साधन वो इतना सुंदर वो कृष्ण हृदय में प्रस्तुत होता है साधन करने के बाद कि वो कल्पना ही नहीं है कोई कल्पना नहीं है साधन से जरूर होगा यदि हम साधन में कर रहे हैं और कुछ अनुभूति नहीं हो रही है कि अनर्थ सब पहले से अधिक प्रयास नहीं कुछ रुचि बढ़ रही है कि नहीं आसक्ति कुछ आ रही है कि नहीं तब तक कुछ गड़बड़ी है साधन भजन इत्यादि और नहीं तो जरूर होगा सुपुष्ट पुष्टि खुद आयन होगा एक एक ग्रास खाने के साथ ही साथ में पुष्टि और तुष्टि दोनों होगा ही अवश्य संभावित ऐसे ही भजन करने से नहीं होगा होगा जरूर तो यदि नहीं कुछ हो रहा है तो समझो कि कहीं गड़बड़ी है गड़बड़ी दिख भी पड़ती है यदि साधन ठीक से होगा तो संसार के प्रति जो आसक्ति है धीरे 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 कम यदि बराबर बराबर दोनों है संसार में आसक्ति भी है और भजन में भी ठीक है दोनों बराबर बराबर है तो ऐसे बराबर बराबर लाख जन्मों तक चलता चला जाए संसार के विषय में भी आ सकती और थोड़ी सी भगवान में भी रुकी है बराबर और बराबर है तो वैसी की वैसी रहेगी एक बर्तन में छेद है, पानी जितना भरते हैं छेद का उतना ही ये है, उतने परिमाण में वो पानी निकल जाता है। आप भरते जाएंगे वो निकलता जाएगा, जैसा का तैसा। यदि साधन भजन आपका अधिक होता है, संसार की आसक्ति कम रहती है, तो इसमें आपका साधन भजन कम। और यदि घर आसक्ति एकदम दूर हो जाएगी तो घर में आप परिपूर्ण रूप से हो जाएगा। तो कहते हैं ऐसा होने पर कृष्णमान यहाँ पर कृष्ण के रूप में प्रस्तुत, और ऐसा रूप है वो जो कृष्ण को भी उन्मादना बना दिया, वो भी मुक्त हो जाते हैं कृष्ण को रूप को देख करके, अपने रूप को भी देख करके। इसी के लिए श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध में बतला कृष्ण जी के आदेश से धाम में चले जाने पर उनके आदेश से उद्धव जी द्वारका छोड़ करके आ रहे हैं। वे यमुना के कहीं आसपास में वो विद्युत जी से मिले, विद्युत जी से मिलते ही रोने लगे। विद्युत जी ने कुशल क्षेम पूछा, अगर कुशल क्षेम तो जगत का चला गया, अब कुशल क्षेम नहीं। जब तक कृष्ण थे तब तक कुशल क्षेम, और उन्हीं की बालकपन से बाल्य लीलाओं से आरंभ करके और अंत तक के जितनी भी लीलाओं का उसका संक्षेप में बड़ा ही सुंदर उन्होंने कहा, और वर्णन करके अंत में मुक्ति हो। फिर विद्युत जी को सुनाने पर उन्होंने कहा जैसे आप लोगों के लिए क्या उपदेश दिया, उपदेश दिया कि आप बद्री महल में चले जाइए, वहां पर आपको
मैत्रेय
मैत्रेय ऋषि मिलेंगे। उस समय में उस मैत्रेय भी थे, आपके लिए उनको आदेश दिया कि वो आपको सब। इन्होंने क्यों नहीं कहा, ये कृष्ण के भाव में इतने भी भोर हो गए, अभी कुछ कहने में समर्थ नहीं, तत्व ज्ञान उनसे नहीं होगा, सृष्टि की बात उनसे नहीं होगी, कृष्ण की ब्रज की लीलाओं का ही वो स्मरण करके बस उसी में हो जाए और बात उनसे आएगी इस कार्य का। और मैत्रेय जी का क्या था, उनका कृष्ण की लीलाओं में इतना आवेश नहीं था जितना इनको हो उद्धव जी, क्योंकि उद्धव जी गोपियों का संग भी पा चुके हैं, कृष्ण का भी स्वरूप अब अच्छी तरह से समझ में, और उन लीलाओं के प्रति उनका इतना अभिनिवेश हो गया है, आसक्ति हो गई है। अब दूसरी बात इनसे होगी, यहाँ पर जितना कहा कुछ इसमें तत्व ज्ञान की कोई बात नहीं, तत्व ज्ञान की परिसमाप्ति के बाद में ये सब लीला प्रसंग था, और उनको ये सब चीज बतलाने, सृष्टि क्या है, आसक्ति क्या है, ये कैसे दूर होगी, और कैसे फिर भगवान के चरणों में प्रारंभ से त्रुटि होगी, ये तो प्रेम की ही बात बतलाएंगे और प्रेम का दूसरा कुछ कहेंगे। इसलिए जगत के कल्याण के लिए इसकी भी आवश्यकता है, इसलिए वो कह रहे हैं जन्म कलियो परिकम सजोग माया बलम दर्शयिता ग्रही विस्मापनम स्वस्थ च सौभगवे परम पदम भू संतुष्ट। कृष्ण की लीलाएं को लोग कुछ ऐसा समझते हैं, सुन रहे हैं ना खूब मन से सुनिए, इधर उधर मत देखिए। कुछ लोग ऐसा समझते हैं सबसे श्रेष्ठ तत्व है नारायण, नारायण से श्रेष्ठ है कोई तत्व नहीं, नारायण का इस पृथ्वी लोक में अवतार नहीं है, खुद स्वयं रूप का अवतार है नारायण, कभी नहीं तब अपने अंश कलाओं को वो भेज देते, ये अंश कलाओं में कृष्ण ही भी उनके अंश है और उन्हीं के अवतार, नर नारायण उन्हीं के अवतार, राम उन्हीं के अवतार, इस तरह से ये सिख संप्रदाय वाले विशेष या सभी नारायण को ही मानते हैं अधिकतर और उसे ही ये सब अवतार जीते हैं। नारायण श्लोक में नहीं है, उनसे बढ़कर के सुंदर, उनसे बढ़कर के गुणवान, रूपवान, परिकर वैशिष्ट इत्यादि से युक्त और वही अश्लोक है। उन्हीं के अंश ये कर्णाधिशाही इनके उनसे जो गर्भाधिशाही उनसे ब्रह्माचारी सबके मूल स्वरूप, उसे ऊपर और वैकुंठ से ऊपर कोई धाम नहीं। विशेष करके जो कृष्ण और राम हैं वो उनके बराबर नहीं है, नारायण के बराबर क्यों नहीं है, इसलिए कि एक तो वो चतुर्भुज हैं, ये दोनों ही द्विभुज हैं। कभी कभी कृष्ण चतुर्भुज मात्र और नरलीला के नरलीला करते हैं, नारायण नरलीला कर ही नहीं करते, इसलिए नारायण ही करते ऐसा किसी की। व्यास जी समस्त शास्त्रों के वक्ता अथवा रचयिता है, प्रकाशक है। जितना हमारा कुछ वेद बने तो शास्त्र जो कुछ है सब एक तरह से कहो तो व्यास जी से ही सब, इसलिए जो व्यास जी कहते हैं वही ठीक है। तो ये व्यास जी कह रहे हैं और व्यास के बातों को ही यहां पर ये कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं, उद्धव जी के बात को व्यास जी कह रहे हैं। मूल वक्ता कौन है, उद्धव जी है, किंतु उसको इस जगत में व्यास जी ही भागवत के रूप में इसको प्रकाश किया, तो ये भागवत में लिखा गया है। तो उसी ये कह रहे हैं उद्धव जी, जन्मत कली लो कैसम, ये जीव जितने हैं जड़ और जगत ये सब पश्चात काल की अर्वाचीन सृष्टि है, वो जगत की तो सृष्टि नहीं है, इसकी जो ये अर्वाचीन मैंने पीछे वाली सृष्टि है। तो मत्स्य लीला में जीव भगवान को भूलकर लाखों कोटि जन्मों से अर्थात अनादि काल से जब से इसकी सृष्टि आदि तब से भूल करके भगवान को भूल करके इसमें पड़ा है और इसी को अपना स्थान मानता है और प्रारंभ से इसमें सुख खोजता है और कहीं भी सुख नहीं पाता। याद तो हमें है नहीं, मैं तो करोड़ों जन्मों से हम लोग घूम रहे हैं ऐसा ही संसार और करोड़ों जन्म हमारे बीच चुके हैं, किंतु हम समझते कि यह नया जन्म है और बड़े उत्साह के साथ में हम लोग सुखी होने की चेष्टा करते हैं। एक सुअर का बच्चा भी जिसे हम घृणा करते हैं उन्हीं बच्चन में कैसा सुंदर होता है, उसकी मैया कैसे उसको स्नेह करती है, पालन पोषण करती है, तो ये सभी लोग समझते। वो भी अपना प्राण नहीं छोड़ना चाहता, वो जो भी तो नहीं छोड़ना चाहता, इसी तरह से मनुष्य भगवान को भूल करके लाखों करोड़ों जन्मों से उधर घूम रहा है और भगवान की ऐसी माया यदि कहीं से सुनता नहीं है लाखों जन्म से ऐसे हम लोग भोग रहे हैं दुख हो रहा है ऐसे आ रहे हैं, तो अभी माया को छोड़ करके भगवान के एकांतिक भजन में वो नहीं आ रहा। संसारिक लोगों को तो जैसे पशु हैं ऐसे वो लोग भी एकदम जानते नहीं, जानने की कोई चेष्टा है, जो जानते भी हैं ना तो भी खरीद जाते हैं, क्यों जाते हैं, हम लोग तो जानते हैं ये माया की चीजें हैं और इससे कष्ट होगा, जानते हैं फिर भी विशेष करके कुछ लोगों को छोड़ करके चंद लोगों को जो कि रघुनाथ व्यास स्वामी रूप गोस्वामी जैसे हैं या और जो हमारे आचार्य उनको छोड़कर के बाकी जो अनर्थग्रस्त जीव हैं और थोड़ा जानते भी हैं, जान बूझ करके भी इधर में रुचि नहीं होती उधर में रुचि, जानते हैं कि यह बात ठीक नहीं है तो भी वही। एक आदमी कहेगा जैसे आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके घर का तो कोई चिंता नहीं है, घर की चिंता है तो नहीं, घर का कौन काम करता है तो बाल बच्चे का, घर से क्या मतलब है तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है तो नहीं, प्यासों में भरी थी मैंने थोड़ा सा काम रह गया है, क्या रह गया मैंने वही रह गया, वो मैंने पूरा सब आ गया पूछ हटक गई है, कोई काम नहीं है किंतु सब काम है, उसी के लिए उधर मिल गया। बाल बच्चे भी जो चाहते हैं नहीं वो भी नहीं चाहते हैं, आज वो कहते हैं अच्छा अच्छा तुम भजन करो, अब तुम्हारी उम्र 60-65 वर्ष की हो गई है, अब तुम भी भजन, यदि तुमको कुछ पैसे की जरूरत है हम लोग दें, तो कहते ओ हमको घर से निकालने की चेष्टा में तुम लोग ये कहें, ये माया की चेतन है, घर में आता कोई जरूरत नहीं है तो अभी इसलिए कहते हैं कि ऐसे जीवों के लिए भगवान ने गोलोक वैकुंठ धाम से अपना वह परम सुंदर से सुंदर रूप इस जगत में प्रकट किया, इसलिए जो मर्त लीला के उपयोगी हो, मर्त लीला में जो यहाँ के मर्त लोक में रहने वाले जो जीव हैं उनके लिए उपयोगी, उनके लिए उपयोगी मैंने क्या, इधर के लोग इस मर्तलोक में जी पांच प्रकार के हैं, उन्हीं में फंसा रहना चाहते, उससे ऊपर में रूप रस गंध शब्द बस इसी में ये समस्त माया समाई हुई है। शादी करना है, लड़की कैसी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, पहला दिन क्या होना चाहिए, पर कैसा होना चाहिए, अर्थदाई में रहने से रस नहीं आएगा, लड़का गुण सब ठीक है, कमाऊ है कि कैसा है, जब ही कमाने वाला नहीं होगा तो इस जगत में रस नहीं आएगा, तो रुपया पैसा भी चाहिए, तो रूप रस गंध इत्यादि और क्या दूसरा शब्द माने मीठी बोली, मीठी व्यवहार की लड़की या लड़का है कि नहीं इसे देखा जाए, तो इस तरह से स्पर्श ये समस्त मनुष्य में नहीं इतर प्राणियों में भी ऐसा है कि इसी के द्वारा परस्पर आकृष्ट होकर के भगवान को भूले, भगवान ने जीवन को इस माया में भुलाने के लिए ही मानो इस महामाया का ये किया वैशिष्ट रखा है, इसी के द्वारा सब, इसलिए अभी भी हम लोग सब छोड़ करके कुछ नहीं छोड़ा है, ये मत समझना जी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, खाना छोड़ा है ना, कोई सुख छोड़ा है न, रूप छोड़ दिया है न, रस छोड़ दिया है, अभी कल कैसा बना था इसमें निश्चिंत चतुर्दशी के दिन में शाम को आम का वो क्या बना था, कैसा सुंदर था, आज बहुत सुंदर, आज उसमें थोड़ा सा ऊपर संसार छोड़ने पर भी ये सब चीजें हैं, रस भरी बातें हैं, मत देखो क्या साधु समाज क्या संसार रस भरी बातों के लिए जो गंध, साधु जी का चढ़ावा भी गंध को दे दिया पता नहीं रख दिया उसको सुगंध को नहीं रखे, तो त्यागी भी इसे नहीं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उस गंध के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, और स्पर्श स्पर्श के लिए ही जगत मर रहा है, भगवान ने देखा जैसे ये जीव रूप रस गंध शब्द स्पर्श में ऐसे मत, यदि वो जो अभी जैसा रूप रस गंध शब्द स्पर्श पा रहे हैं उससे भी कोई सुंदर चीज इस जगत में उतना भी उससे भी अधिक सुंदर सुगंधी रस करी और वह उससे भी सुंदर स्पर्श ऐसे भी सुंदर सुगंधित यदि उसको हम दे दें किसी प्रकार से तो उन जीवों को कभी किसी तरह से आकर्षित करके जितना सुंदर रूप है ये सबका रूप मूल क्या क्या है वो कृष्ण कृष्ण ने जपे का लीला
सर्वोत्तम
नर बपु गोपवेश
नरलीला
उनका स्वरूप है इतना सुंदर रूप है यदि वो ले आए यहाँ और उसको लोग देख लेना एक बार यदि किसी ने देख लिया तो फिर इस जगत के रूप के प्रति उसकी घृणा उसकी सुंदर मधुर बोली यदि किसी ने सुन ली जगत की कोई बोली सुनने की और इच्छा नहीं उसी तरह से उनका रस कृष्ण भक्ति का जो रस है जिसने पान कर लिया फिर संसारी किसी भी रस में वो नहीं हो उसी प्रकार से उनका स्पर्श कृष्ण का यदि हो गया तो उसी पर बस हो गया जगत से उसका कोई भी सुन इसलिए कृष्ण मर्थ लोग के लिए उपयोगी अपनी लीलाओं को इस जगत में प्रकाश करते हैं अपने रूप को अपने लीलाओं को प्रकाश यदि किसी प्रकार से उनसे और इन माइक लोगों से कोई संपर्क हो जाए तो इस जगत को खुल करके भगवान के प्रति किंतु यह असंभव है जड़ और चेतन जो है ना ठीक तीन और छ का संबंध एक दूसरे से दूसरी दिशा में इसलिए चित वस्तु को इस जड़ जगत में कैसे प्रकाश करें ऐसे प्रकाश करें अपनी अत्यंत अभटन भटन प्रत्याशी शक्ति जो योग माया है उसके माध्यम कैसे करेंगे ये शक्ति तीन वृत्तियां संबित संधि ज्ञान नहीं होने से समझ नहीं सके तो ये राधिका जी का एक संबित एक वृत्ति है और एक है संधि और एक है जिसके द्वारा जगत को आनंदित करते हैं अपने भी आनंद ग्रहण करते हैं आप दूसरों को भी आनंद प्रदान वह आनंद का जितना स्वरूप है उसको एकत्रित करने पर वो महाभाव का है वही माया था महाभाव जब तक वो जो है जगत पर कृपा करके कृष्ण से और बद्ध जीवों का संबंध न करा दे तब तक उसको कोई न देख सकता है न उनका माधुर्य स्वादन कर सकता है न उनका रस आस्वादन कर सकता है न उनकी लीलाओं को दर्शन कर सकता है न उनका स्पर्श पा सकता योग माया का ही ये खेल इसलिए जब धर्म प्रकट होता है कृष्ण की लीला प्रकट होती है तो योग माया जी कृपा करके उस लीला के साथ में उसका संबंध इसलिए उसको दर्शन यह जो माया का ही यह प्रभाव कृष्ण अपने उस लीला को जो किमयी अपराधित लीला है योग माया के प्रभाव से इस जगत में कृष्ण सब समय योग माया के द्वारा आच्छादित रहते हैं गीता में योग माया समाप्त योग माया के द्वारा यदि वही योग माया इस जगत से संपर्क करा दे अथवा जिस व्यक्ति के साथ में जीव साथ में वो दे संबंध स्थापित कर तो उसका तो हो जाएगा सब इसलिए कृष्ण लीला में भी जैसे इस जगत में मैंने ये लाइट जलाया, अब ये सभी लोग देख रहे हैं, किंतु जोगमाया की ऐसी एक शक्ति है, वो जलाएंगे तो जिसको चाहेंगे उसको ही दिखाई पड़ेगा, सबको नहीं दिखाई पड़ेगा। ये जोगमाया की एक असीमित घटना है, यहाँ पर हजार आदमी बैठे हैं, किंतु जोगमाया अपनी शक्ति के प्रभाव से एक व्यक्ति विशेष को उस लीला से संबंधित करके उसी को ही उसमें, किंतु यहाँ पर अभी हम लाइट जलाएंगे तो सभी लोग देखें, हम में ऐसी शक्ति नहीं है जो केवल जिसको चाहे उसको दिखला। इसलिए कृष्ण लीला के समय में कंस, जरासंध, दंतवक्र, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और जितने विरोधी थे, पंडित वासुदेव इत्यादि भी थे उस समय में थे, किंतु जोगमाया की ऐसी घटन घटन शक्ति जिसे इन लोगों को दिखलाई नहीं दिया, क्यों नहीं दिखलाई दिया? क्योंकि वो महामाया को पकड़े हुए हैं, अत्यंत अधिक अनर्थग्रस्त है, इसलिए उनको जो निर्मल हृदय वाले थे, हृदय की निर्मलता के तात्पर्य से भगवान की उन लीलाओं को उतने ही रूप में देखा जिनका हृदय जितना निर्मल। युधिष्ठिर महाराज ने, अर्जुन ने जो देखा, नारद जी ने उतना देखा कि नहीं, कि उसे और अधिक देखा, क्या कहा जाए? नारद जी ने उसको अधिक देखा होगा ना, जो युधिष्ठिर अर्जुन जी की क्या है,
नारद जी
क्यों? नारद जी को सुजोग मिला हो गया, एक पलंग पर बैठ गए हैं, ये लोग ऐश्वर्य भूमिका रहते हुए भी उसको भी थोड़ा सा पार कर चुके हैं, आधा पार कर चुके हैं, और नारद जी ने सब समय ऐश्वर्य किया है। वो कह रहे हैं किंतु इनको मुझे पता नहीं, क्योंकि नर लीला के अनुरूप है, उस नर लीला का आस्वादन कर सकते हैं और वो आश्चर्यचकित रहते हैं, आस्वादन नहीं कर सकते, ये दोनों में अंतर है ना? नहीं समझ में आए? वो कृष्ण को अपना मित्र, सखा, बंधु सब कर सकते, ये नहीं कर सकते, चाहते हैं जो वैसा हमको हो जाए, इसलिए उनके भक्ति के तात्पर्य से जिसका जैसा हृदय निर्मल है उसी, जैसे इसी तरह से समझो, हम एक ही तरह की व्याख्या कर रहे हैं, समझने वाले तरह तरह से इसको समझ रहे, एक समान सब नहीं समझे, और एक कुछ नहीं तो अलग अलग रूप में, कोई कोई एकदम समझेगा ही नहीं, ये क्यों? पूर्व जन्म का संस्कार हृदय की नहीं। तो मर्तवीलो वैकम माने मर्तवीला के उपयोगी, माने जिस प्रकार से इस जगत में रूप रस गंध शब्द स्पर्श उसमें लोग व्यस्त, उनके लिए उपयोगी भगवान के लिए जाओ, रूप रस गंध भगवान का यदि उनके साथ में जोग माया में संपर्क करा दिया तो वो देखते हैं, क्या देखते हैं? कृष्ण को दर्शयिता ग्रहितम, दर्शयिता मैंने दिखलाया, किसी ने देखा नहीं, एक होता है देखना और एक होता है दिखलाना, गुरु वर्ग दिखलाते हैं, हम लोग देख नहीं सकते, अभी ठाकुर जी को हम लोग नहीं देख, यदि देख लेंगे ना तो एक दिन तो महापुरुष जी की कृपा होगी, रघुनाथ दास को स्वामी क्या करेंगे, अभी कुछ गड़बड़ी है, योग माया का भी पूरा अपनी हम लोगों पर पूरी कृपा नहीं है, या उनकी कृपा होने पर भी हम ले नहीं गए, तो योग माया का बल दिखलाने के लिए, अर्थात योग माया यदि दिखलाएगी तो होगा विस्मापन, वो ऐसा रूप इस जगत में प्रकट किया कृष्ण ने, जो माधुर्यों का माधुर्य, सुंदर का भी सुंदर, सुंदर शरीर, मधुर से भी कितना सुंदर, जिसको देखकर के स्वयं ही मोहित हो गए, आकर्षित हो गए। स्वस्थ सौभाग्य सौभाग्य मैंने सौभाग्य किसका सौभाग्य जीवों का सौभाग्य किसका सौभाग्य अपना या योग माया का। योग माया की जितनी शक्ति है जितनी उसके चरम सीमा पर जिस चीज को ये कृष्ण का नाम रूप गुण लीला प्रकाशित करती है ये उसके लिए परम सौभाग्य। ये सौभाग्य की अंतिम सीमा इस जगत में कृष्ण की ये शक्तियों को उसमें परम पदम भूषण भूषण परम पदम ये जो है परम पद है किसके लिए इस जगत में देवी धाम है ये देवी इसके बाद में इसके आठों के आठ
आवरण
आवरण इसके बाद में विरजा इसके बाद में ब्रह्मलोक ज्योतिर्मय धाम इसके बाद में शिवलोक इसके बाद में वैकुंठ धाम वैकुंठ से भी ऊपर साकेत धाम उससे भी ऊपर गोलोक धाम उससे ऊपर भी द्वारका उससे भी ऊपर ये जो परम पद है इतने पद हैं इन परम पदों में भी परम पद वो क्या है गोलोक गत का जो ब्रज है वो वहां की ये संपत्ति है उसको इस जगत में आप ऐसा क्यों कहते हैं नारायण से बढ़कर तो कोई तत्व है नहीं। अरे नारायण की क्या नारायण तो खुद की खुद उनकी लक्ष्मी इत्यादि भी जो उनके रूप से मोहित थी वो भी उनको छोड़ करके कृष्ण की आकांक्षा करने लगती है कृष्ण इतना इसमें सौंदर्य माधुर्य और ये सब लक्ष्मी बीवी पति प्रकार से रोमणी है किंतु होने पर भी पति प्रकार को छोड़ देती है तभी उनका पतिव्रत जाता है। इसी चीज को दिखलाने के लिए हमारे यहाँ शास्त्र में पंचकर्म न्याय मानेंगे कौन पंचकर्म न्याय द्रौपदी कुंती अहिल्या कोई भी कन्या नहीं है एक से अधिक सबके पति है वो भी विचार में है कुंती छ पति पांच तो ये सब और छठवे हैं अच्छा उनके पांच पांडव हैं उनकी अहिल्या का तो सभी जानते हैं क्या स्थिति तारा की वही पहले बाली और इसके बाद में सुग्रीव और तारा मंदोदरी रावण और इसके बाद में इसके पति में विभीषण इसमें कोई भी कन्या नहीं बल्कि व्यभिचार का दोष दिखा तो अभी खबरदार ऐसा मत कहना मैं तो तुम्हारा पाप हो लगे नरक में जाए ये पांच कन्याएं इनकी शादी नहीं हुई ये कन्या का है क्यों इन्होंने परम पुरुष कृष्ण को भी अपना पति माना लौकिक व्यवहार के लिए इसको ग्रहण करके भी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए ये समाज के इन चीजों को ग्रहण किया कि जो उनका मूल उद्देश्य है राम या कृष्ण हमारे इस भाव के कारण ये पंच कन्याएं हैं। इस तरह से लक्ष्मी जी परम पतिव्रता है नारायण के पास में किंतु कृष्ण का रूप दर्शन करके श्रवण करके और वो भी नारायण को छोड़ करके नारायण ने उनको छोड़ के नहीं दिया नारायण क्यों नहीं छोड़ा या हमारी पत्नी कृष्ण के अरे उनमें दोनों तत्व दो एक ही है आप दूसरी बार नारायण खुद ही मोहित हो जाते हैं तो उनके लिए क्या करें नारायण स्वयं ही मुक्त हो जाते पुरुष होने पर भी राधिके व राधिका के समान कृष्ण ही वो नारायण को छोड़ो नारायण के भी ऊपर वाले जो हैं वो भी अपनी इस मूर्ति को देख करके राधिका के समान ही उसको प्रेम करने की वासना उनके अंदर में, सेवा करने की वासना कृष्ण में ही लग जाती है। तो और ये नारायण कौन है? कृष्ण है मूल। कृष्ण से हुए बलदेव, ये बलदेव प्रभु ब्रज के और हैं, और इन्हीं का प्रकाश वहां पर मूल संकर्षण वहां पर है, और वासुदेव कृष्ण के प्रकाश है। कृष्ण जो यहां पर ब्रज में है उनके प्रकाश हैं वासुदेव, और यहां पर बलदेव जो हैं उनके प्रकाश हैं। अब वहां पर जो है उनका नाम हो जाएगा मूल संकर्षण, और वहां पर हो जाएंगे कृष्ण वासुदेव, ये पहला उनका। और उससे जो दूसरा जो निकलेगा बैकुंठ के यहां रहेंगे उनका हो गया महासंकर्षण, और महासंकर्षण से ही ये तीन पुरुष और जितने अवतार सब निकल गए। और उस बलदेव से एक और निकलता है, वो क्या? ये नारायण, या कृष्ण से ही कहो या वासुदेव से कहो, ये नारायण। इनका ये वैभव प्रकाश नारायण में 60 गुण है पूर्ण मात्रा में, ऐश्वर्य भी पूर्ण मात्रा में है, किंतु माधुर्य उनमें कहीं भी नहीं है। भी बहुत 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 एक गंध सीमा जहां पर ऐश्वर्य भी चरम सीमा और माधुर्य भी चरम सीमा का हो, वहीं पर भगवत्ता मूल कहला, मूल भगवत्ता स्वयं भगवान। ये स्वयं भगवान में भी स्वयं एक रूप होता है, ये स्वयं रूप कौन है? ये ब्रजेंद्र नंदन साक्षी, किंतु ये ब्रजेंद्र नंदन होने पर भी जब तक ही राधाकांत नहीं आएंगे उनके साथ में भाव नहीं होगा, जुगल नहीं होंगे, तब तक वो चरम सीमा पर स्वयं भगवत्ता नहीं रहे। इसलिए श्रीमती राधिका के साथ में रहने वाले परिक्रम ब्रज परिक्रम के साथ में परिवेषित रहकर जब वो लीला करते हैं इस जगत में प्रकाश करते हैं, उसको रूप को देकर के कृष्ण स्वयं हो जाते हैं नारायण इत्यादि की तो बात। इसलिए सबसे पर तत्व जो है, क्योंकि उन्होंने ये नरलीला किया इसलिए नारायण से कम हो जाएंगे, ऐसा मतलब कुछ लोगों का ऐसा विचार है। ये कृष्ण से यहाँ आते हैं, नंद बाबा की जूती उठाते हैं, गोपियों की चरण सेवा करते हैं, नारायण को करते हैं इसलिए नारायण सबसे। रामचंद्र जी को भी सीता के साथ में वनवास का दुख भोगना पड़ा, इसलिए राम से भी श्रेष्ठ हैं ये नारायण। किंतु परावस्था रूप में रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया नृसिंह को, राम को, और उसमें भी नारायण का वर्णन नहीं किया, क्योंकि यहां पर उनका अवतार ही नहीं है तो वर्णन क्या करें। इसलिए कृष्ण रूप ही सर्वोत्तम है। विष्णुतमं स्वस्य च, इसके लिए रूप गोस्वामी ने कहीं वर्णन किया है कि कृष्ण बाल्यकाल में गोकुल में खेल रहे थे, नंग भंग थे उसमें, और वो कमर में करघनी पहना थी छोटी सी सोने की, पैरों में नूपुर है, हाथ में कजल कर दिए, टोटी बांध दी, उसने मयूर पंख लगा दिया, छोटी सी बांसुरी अभी हाथ में दे दी, और खाने के लिए मक्खन वो मंथन कर रही थी, मक्खन दे दिया। कृष्ण खेलते हुए और मणि स्तंभ से हाथ इस प्रकार से बाया हाथ रख दिया और घूम लिया, घूमते घूमते नहीं देखा। बहुत ही सुंदर ये बालक है, छाया में देखा मणि स्तंभ में, और देख करके मुक्त हो गई। इतना सुंदर रूप आज तक कृष्ण ने नहीं देखा था, उस रूप को देख करके मुग्ध हो गए और सोचा कि इससे हम मित्रता कर लें, सख्त भाव कर लें, इसलिए खाने का वो देने लगे, तो वो भी हाथ उठा करके ऐसे करने लगे। जब जब थे तो वो भी करें, तो कृष्ण को चीड़ हो गई तो उन्हें प्रसाद इस प्रकार से किया। घुड़की दी बंदर घुड़की तो उसने भी बंदर घुड़की दी, तो भी वो बड़ा सुन। इस तरह से खेल खेल रहे हैं। किसने यशोदा मैया ने देखा ये किसको बंदर घुड़की देखा है, किससे ये बातें कर रहा है, देखा से देखा जा रहे अपनी परछाई के साथ में खेल बस देख करके हंस दिया। जो देखने के साथ में उनके भूल समझ गए ये मेरी भूल है, ये मेरी परछाई। बस यशोदा जी की गोदी में आकर के कपड़े से मुंह धो दिया, यशोदा जी सुन गए। इसी का वर्णन हमारे रूप गोस्वामी जी ने कर इसीलिए कहते हैं स्वस्थ सौकर। कृष्ण का ये लीला जो है ये ऐसा जो है मनुष्य जन्म के मत लोगों के लिए सौभाग्य, योग माया का सौभाग्य। और अपनी जितनी भी लीलाएं अपनी शक्ति की अपने रूप की असंभव भक्त तो सबको इस जगत में इसे मत समझो कि जगत कृष्ण की ये जो लीलाएं है अपना लीला वो बैकुंठ इत्यादि से कम माया द्वारा वो मुक्त हो गए ऐसा मत समझो। वो भूषणों का भी भूषण है, भूषणों का भूषण माने हमारे अंग में भूषण लगाया जाता है तो अंग की शोभा होती है। और कृष्ण के कानों में कर्णफूल जो झूल रहा है कुंडल, उस कुंडल की शोभा उनके गंडोत्सव से हो रही है, इसलिए भूषण का भी वो भूषण। यदि वो भूषण नहीं रहे तो कृष्ण भी ऐसे भी।